सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग इस प्रवचन के सत्र में भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। जो यह ग्रंथ एक अनुभवात्मक है, प्रारंभ से ही इस ग्रंथ में तीन प्रसंगों पर चर्चा हो रही है। पहला प्रसंग है वैराग्य, दूसरा प्रसंग है आत्मज्ञान, तीसरा प्रसंग है भक्ति। वैराग्य आत्मज्ञान की योग्यता देता है। कल हम लोगों ने विचार किया, वैराग्य का साधन विषयों में दोष दृष्टि करना है। वैराग्य हो गया है अथवा नहीं हो गया है, इसकी पहचान क्या होवे, तो वैराग्य का स्वरूप क्या है, तो दूसरा बता जिहासा। जिहासा माने हुआ त्यागने की इच्छा। कोई विषय मिले तो उस विषय में रस न लेकर के उसको त्यागने की इच्छा करना। तीसरा वैराग्य का फल क्या है। वैराग्य जीवन में आएगा तो कुछ न कुछ फलीभूत होगा कि नहीं होगा, तो फल क्या है कि आपके जीवन में दीनता का अभाव हो जाएगा, भिखारी पना समाप्त हो जाएगा, दीनता पना समाप्त हो जाएगा। ये वैराग्य का फल है। फिर आप ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, तो ज्ञान का साधन क्या है, श्रवण मनन और निधिध्यासन है। यह ज्ञान का साधन है। श्रवण तो आप जानते हैं करते हैं, जिस चीज का हमने श्रवण किया है युक्ति के द्वारा उसी को ही मजबूत करना, यह मनन है। मनन में क्या लग जाएगी, एक युक्ति हो जाएगी, युक्ति से उसको मजबूत करना, यह क्या हो जाएगा मनन। और जिसका मनन करके हमने निश्चय किया है उसी में बुद्धि को समायोजित करना, इसका नाम है निधिध्यासन। इसका स्वरूप क्या है, ये तो साधन हो गया ज्ञान का। स्वरूप क्या है, तो तत्व मिथ्या विवेचनम, वस्तु को देखते ही इसमें असली क्या है, नकली क्या है, अधिष्ठान क्या है, अध्यस्थ क्या है, वस्तु को देखते ही बोध हो जाए तुरंत विवेक। किसका, तत्व मिथ्या विवेचनम। इसका फल क्या है, ज्ञान का फल क्या है, पुनर्ग्रंथेह अनुदयो, फिर से ग्रंथि का उत्पन्न न होना। ग्रंथि क्या है, मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ऐसी भूल करके भी भ्रांति पैदा न होवे, इसका नाम क्या है? फिर से ग्रंथि जो अध्यस्त वस्तु है, अध्यस्त वस्तु में मैं बुद्धि पूरी तरह से समाप्त हो जाना, यह इस ज्ञान का फल है। लेकिन अब अध्यस्त वस्तु में मैं बुद्धि समाप्त तो हो गई, लेकिन सही बताऊं जिस वस्तु को छोड़ दो ना और फिर उसी वस्तु का चिंतन करना शुरू कर दो तो वह वस्तु फिर से हमारे ऊपर आरूढ़ हो जाएगी। तो भक्ति एक आवरण देता है, भक्ति माने चिंतन, किसका चिंतन? उस परमात्मा का ही चिंतन चले। परमात्मा माने क्या हुआ? अपने स्वरूप का ही चिंतन करे, स्वरूपानुसंधानम एव भक्ति इति गरीयसी, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना रूप जो भक्ति है ना, वही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो संसार का चिंतन नहीं करेंगे तो संसार अपने आप समाप्त हो जाएगा, ये पक्का जान लेना। अरे भाई हम आपके घर में जावे, आप हमें वैल्यू मत दो, आप हमारी उपेक्षा करो, तो हम कितने दिन रहेंगे? चुपचाप चले नहीं जाएंगे? तो इसी संसार के विषय सारे मौजूद हैं, लेकिन उन विषयों को आप अपने हृदय में जगह न दो, उनकी उपेक्षा करो, तो संसार का विषय ही आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे। क्योंकि आपने महत्व किसको दे दिया है? परमात्मा को। परमात्मा ने अपने स्वरूप को ही महत्व दिया है। जो हमारा स्वरूप है वह सगुण है या निर्गुण है? बोलो भाई क्या स्वरूप है हमारा? हमारा स्वरूप निर्गुण है, और ये भी रूप भी सगुण नहीं, ये भी निर्गुण ही है। क्योंकि रस्सी पे जो सांप दिख रहा है उस सांप को क्या कहोगे, सगुण है कि निर्गुण है? ही नहीं, वहां तो सत्य ही नहीं है। ते शरीर भी स्वप्न के शरीर की तरह पूरी तरह से मिथ्या है, वास्तव में इसकी भी सत्ता है ही नहीं। इसको श्रुति और पुराणों के द्वारा गूढ़ भाव से कहा गया है, इस पे हम लोग कल से चर्चा आरंभ की है। श्रुति भी महापुराणैः सगुण गुणातीतयोः रैक्यम यत् प्रोक्तम गूढ़तया तद अहम वक्षे अति विशदार्थम। श्रुतियों के द्वारा यहां तक महापुराण है, बड़े बड़े पुराणों के द्वारा क्या बताया गया है? सगुण गुणातीतयोः ऐक्यम, सगुण और गुणातीत दोनों एक ही है। जिसे वस्त्र सूत ही है, वस्त्र क्या है? सूत ही है। त्या पूरा का पूरा संसार ब्रह्म ही है। फिल्म में जितनी तस्वीरें दिखती हैं सारी तस्वीरें प्रकाश ही हैं। सारी तस्वीरें क्या हैं? प्रकाश ही हैं। प्रकाश से पृथक फिल्म में दिखने वाली कोई तस्वीर है ही नहीं। सूत से पृथक वस्त्र है ही नहीं। तुलसीदास जी ने इसी भाव को लिखा है, सगुण ही निगुण ही कछु नहीं भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद है ही नहीं। वास्तव में जो सगुण रूप से दिख रहा है वह वास्तव में क्या है? निर्गुण ही है। यह कहां बताया गया है? श्रुतियों के द्वारा। और कहां बताया गया है? महापुराणैः, महापुराणों के द्वारा बताया गया है। यत् प्रोक्तम गूढ़तया, जिसको छिपा के कहा गया है, स्पष्ट नहीं कहा गया, छिपा के कहा गया है, दूसरे भाव से कहा गया है, उसी छिपे हुए अर्थ को वक्षे मैं कहूंगा। कैसे कहोगे? अति विशद अर्थम, व्यापक तौर पर उसके अर्थ को मैं आपको समझाऊंगा। इसके विषय में कल हम एक भागवत का दृष्टांत आपके सामने रखे थे। भागवत में दो दृष्टांत लेकर चले थे, कौन सा? एक चक्रव्यूह था। अब वो चक्रव्यूह बना अथवा वो चक्रव्यूह नहीं बना, उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु मरा अथवा अभिमन्यु नहीं मरा, लेकिन इस संसार रूपी चक्रव्यूह में तो हम लोग पक्का मर ही रहे हैं। और सब लोग कहते हैं बेटा घुस जा मैं निकाल लूंगा, नहीं कहते? अरे भाई हम लोग ना गांव के बंदे हैं, और पश्चिम में, पश्चिम साइड में तो बेटा कितना कमाता है वह देख करके शादियां होती हैं, अब पूरब में ना बाप कितना कमाता है देख के शादियां होती हैं। सही बता रहा हूं, बाप का कितनी संपत्ति है देख के शादियां होती हैं। सही है गलत बता भाई? और जब बेटे की शादी करना होता है ना, तो बेटा जब बहाना करता भी पिताजी मैं कमा नहीं रहा हूं कैसे शादी करूंगा, तो बाप कहता मैं मर गया हूं क्या है? तू शादी कर ले, खाने पीने की चिंता तो कौन करेगा, मैं करूंगा। कौन कहता है? बाप। मैं हूं ना, बाप कहता है। और शादी कर ले वे, और फिर बाप भी हाथ खड़ा कर देता है, अब तूने शादी किया है तू जा। तो ऐसे संसार के लोग इस संसार के चक्रव्यूह में फंसाना तो जानते हैं, अब फंसाते हैं तो कहते हैं मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रहा, तू घुस तो। और एक बार बेचारा घुस गया तो निकलने के समय सब लोग क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। यही हालत बेचारे हमारे अभिमन्यु को हो गई। अभिमन्यु घुसने के लिए पहले मना नहीं कर रहा था, लेकिन चाचा ताऊ ने क्या बोला, अरे तू क्यों चिंता करता, मैं हूं ना, तू 6 दरवाजे तोड़ दो, 7वां तो मैं अपने गदे से तोड़ दूंगा, ना चिंता करना। किसने कहा? भीम ने। अब जब बेचारा फंसा तो कोई माई का लाल सामने आया नहीं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, इस संसार के दलदल में तभी घुसना जब वहां से निकलने की कला आती होवे। तो यदि निकलने की कला न आती होवे ना, तो संसार के दलदल में घुसना ही नहीं। सही बता रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। हमें तैरना तो आता नहीं है, तालाब में कूद पड़ते हैं। अब कभी कोई बच्चा लेवे बड़ी मुश्किल है। अब कहो ऐसा कौन घुसा है संसार के दलदल में जिसको निकलना आया है? तो आपने कर्दम ऋषि का नाम सुना है। कौन सी ऋषि का? कर्दम ऋषि का। तपस्या करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। ईश्वर क्या मांगते हैं? ईश्वर क्या मांगते हैं? यदि मनोनुकूल कन्या मिल जाए ना, तो विवाह करने में कोई आपत्ति है ही नहीं। विवाह तो किए, लेकिन सशर्त विवाह किए। क्या किया? सशर्त। जिस दिन पुत्र पैदा हो जाएगा उस दिन, अब पुत्र के बजाय कितनी कन्याएं हो गई? 9 कन्याएं हो गई। 10वां पुत्र पैदा हुआ और हर बार जाने के लिए तैयार होते थे। उसे 9 कन्याएं एक साथ ही पैदा हुई है, यहां बताया जाता है। तो कहा महाराज इन कन्याओं का विवाह करना, अब फिर क्या होगा? बच्चा जो मतलब फिर मेरे को किसी आश्रय पे छोड़ना, मैं किसके सहारे रहूंगी आप चले जाओगे तो। तो जब 10वां के रूप में कपिल जी आए तो तुरंत क्या बोला? नमस्कार, अब मेरी शर्त पूरी हुई, अब मैं तो चला। अब हम लोग क्या बोलेंगे? 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र पैदा हुआ है, उस पुत्र को कुछ दिन तो प्यार कर लूं, कुछ दिन तो खिला लूं, कुछ दिन तो उसकी भी उन्नति देख लूं, फिर मैं जाऊं। हम वहीं फंस जाएंगे। ये महापुरुष इतने नहीं, जरत कारु का दृष्टांत आता है महाभारत में। किसका? जरत कारु का। जरत कारु का। सौभद्र ऋषि का दृष्टांत आता है। किसका? सौभद्र ऋषि का। इतना ही नहीं, हम तो कहते हैं कि हमारी कुंती मैया भी, जिस दिन पांडवों का राज्य मिला, कुंती ने कहा यह राज्य तुम्हें मुबारक, मैं तो चली तपस्या करने के लिए अपने ताऊ और ताई ओ जेठा और जेठानी के साथ। कुंती भी राज्य छोड़ के कहां गई है? जंगल गई है अपने जीवन का उद्धार करने के लिए। तो ये लोग संसार में घुसे तो हैं, इन संसार से निकलना भी इनको आता है। हम लोग संसार में घुसते हैं, इन संसार से निकलना आता है ही नहीं। दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया था भगवान कृष्ण का जन्म। किसका जन्म? कृष्ण का जन्म। इसका भी मैंने आध्यात्मिक अर्थ बताया। यह शरीर ही क्या है? रथ है। इस शरीर को चलाने वाला कौन है? अहंकार। अहंकार माने कंस। कौन चला रहा है? कंस। अभी कंस इस शरीर के साथ मतलब इस शरीर रथ है, इसका मालिक अभी वसुदेव है। कौन है? जीव। तो जीव का विवाह भी संसार के साथ हुआ है, तो जीव को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे जीव का विवाह देवकी के साथ होता है, विवेक के साथ होता है, बुद्धि के साथ होता है, वैसे कंस घबराता है, अब मैं अहंकार नहीं कर पाऊंगा। तो देवकी को ही मारना चाहता है। किसको मारना चाहता है? देवकी को। लेकिन वो हाथ जोड़ के कहता है भैया देवकी को न मारो, जो इससे पुत्र पैदा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। तो जेल में डाल देता है। जेल कौन है? कंस ने ही इस संसार रूपी जेल में डाल दिया है और तमाम कष्ट दिया है। क्यों कष्ट दिया है? कि आप बुद्धि को छोड़ देवे, विवेक को छोड़ देवे। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी वसुदेव ने देवकी का त्याग नहीं किया और उससे एक एक बेटा पैदा हुआ। कौन सा बेटा? शरीर ही आत्मा है। फिर कौन? उसको मार दिया। फिर प्राण ही आत्मा है, इंद्रियां कह दो, इंद्रियां आत्मा है। फिर मन आत्मा है, फिर प्राण आत्मा है, फिर बुद्धि आत्मा है, फिर अहंकार आत्मा है, फिर अज्ञान आत्मा है। इस तरह से सात पुत्र मारो और सातवें के बाद आठवें रूप में कृष्ण का आविर्भाव होगा। बाहर नहीं कृष्ण पैदा होगा। कहाँ पैदा होगा? आपके भीतर ही कृष्ण पैदा होगा। और कृष्ण के पैदा होते ही सारे बंधन छूट जाएंगे। देखा ना, सारे बंधन क्या हुए? छूट गए। लेकिन उस कृष्ण को अभी प्रकट नहीं करना है, उसको छिपाना है। कहाँ छिपाना है? गोकुल में। गोकुल माने इंद्रियों के बीच में छिपाना है, और वहां से माया को स्वीकार कर लेना है। हम अज्ञानी हैं। हम क्या है? अज्ञानी हैं। और छिप करके ही वह ज्ञान अपने भीतर के शत्रुओं को मारे, लोभ क्रोध काम कर्म पाप सबको समाप्त करे। अंत में जब ज्ञान मजबूत हो जाए तो उस ज्ञान को प्रकट कर देना। अब प्रकट होते ही अहंकार भी मर जाएगा। इस तरह से पुराणों में भी जो चर्चाएं बताई गई हैं, नहीं सही बताऊं, पुराणों में कभी देखो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हमें तो लगता है जैसे भगवान कृष्ण दो भुजा वाले थे, चार भुजा वाले थे। आप बताओ, भागवत के अनुसार दो थे कि चार थे? भागवत के अनुसार पक्का यकीनन। तो जो पौंजक था वह भगवान का नाटक करता था तो कितनी भुजा धारण करता था? नहीं कहता था मैं कृष्ण का अवतार हूं, अपने आप को कृष्ण वासुदेव, मैं कहता मैं ही असली हूं, वो नकली है। कौन है? देवकी नंदन नकली है, मैं क्या हूं? असली हूं। तो नकली का असली का यदि नाटक कर रहा तो कितनी भुजा धारण करता था? तो इससे सिद्ध हो रहा कि कृष्ण की चार नहीं होंगी। तो लेकिन यदि कृष्ण के पास भी चार होती तभी तो धारण करता होगा। तो लेकिन पुराणों में ये सब बहुत गूढ़ चीज बताई गई है। जैसे चार भुजाओं का भी एक प्रतीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला कौन है? नारायण है। अब उसकी चार भुजाएं रखा दो, क्या फर्क पड़ता है? ये गूढ़ तया है। देवी के कितने हाथ है? अष्टभुजा, अथवा कोई कहते हैं बारह भुजाएं, कोई आठ भुजाएं। तो हमारे जीवन में आठ बंधन हैं, उन बंधनों को जो काटने वाली हैं, इसलिए आठ बंधन को काटने के लिए उनकी कितनी भुजाएं की कल्पना कर दिया गया? आठ भुजाओं की कल्पना कर दिया। नहीं तो कभी कभी लगता है कि कैसे रावण के पास दस सर है, कैसे सोता होगा, करवट भी नहीं बदल पाता होगा। कभी कभी ऐसा है कि मन में संशय आता ही नहीं आता। बता, हम तो देखो भाई, हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट है, बचपन में एक संशय आता था। बनियाइन होती ना, बनियाइन तीन छेद होते ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तीन होते ना। अब कभी बच्चा बनियाइन पहनता था तो सर यहाँ का यहाँ डाल लेता था। देखा नहीं आपने? परेशान हो जाता था, छेद ही नहीं मिलता था, किस छेद से कौन हाथ डाले। अब आठ ब्लाउज के छेद इधर आठ इधर, और वो हाथ जरा सा सीरियल चेंज हो जाए तो बड़ा मुश्किल। तो इन आठ भुजाओं की जो कल्पनाएं की गई हैं किसमें? श्रुतियों में, पुराणों में, उन कल्पनाएं निरर्थक नहीं है। हाँ रूपक है कि आठ हमारे जीवन जो बंधन है, आठ जो पास हैं, उन पासों को काटने में वह देवी क्या हैं? समर्थ हैं। इसलिए उनके पास आठ अथवा बारह भुजाएं की आरोपणा की गई है। ब्रह्मा जी के चार सर बनाए गए। चार सर का मतलब हुआ चार वेद। चार सर का मतलब क्या हुआ? चार वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। तो ये सब एक प्रतीकात्मक रूप में उनके निरूपण किया गया। जैसे एक और अर्थ लेके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी मैंने बताया कि कथा हुई तो उसमें एक बड़ा बढ़िया प्रसंग आया, आप लोगों ने भी सुना होगा, भस्मासुर का। किसका प्रसंग? आप लोग भागवत बहुत बढ़िया पढ़ते हो, सुनते हो, हमें भी वो कथा सुनने में बड़ा मजा आता है। भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव की तपस्या किया। उस राक्षस ने यह वरदान मांगा कि जिसके सर पे मैं हाथ रख दूं वो जल करके भस्म हो जाए। उसने पार्वती को देख लिया, थोड़ी पार्वती क्या थी वहां तैसे ज्यादा सुंदर थी, तो उसने सोचा क्यों ना यह हाथ शिव के ऊपर ही रख दे मैं और पार्वती को मैं प्राप्त कर लूं। और शिव पर हाथ रखने के लिए वो दौड़ा, फिर नारायण ने उनकी क्या किया, रक्षा किया और उसका हाथ उसके ऊपर ही रखवा करके उसको भस्म कर दिया। एक कथा सुनो तो बड़ा मजा आता है नहीं, लेकिन आनंद आता है। लेकिन इस कथा का रहस्य क्या है, राज क्या है, देखना बहुत गहरा रहस्य है। हम लोग इस कथा के रहस्य को, गोरत को समझ नहीं पाते। असुर तो दूसरा कौन हो सकता है, हम ही लोग हैं। देहाभिमानी व्यक्ति जो असुस रमते यह स असुर, जो खाने पीने प्राण के ही धर्म में निर्वाह करता है वह सब कौन है, असुर है। त्रिपुरासुर में हम लोग बोलते हैं तीन पुरों में जो अभिमान करे उसका नाम कौन है, त्रिपुरासुर है। तो असुर तो हम ही लोग हैं। तो वह असुर शिव की आराधना करता है, तो आराधना के साथ उसको ब्रह्म ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है, एक ब्रह्म वृत्ति मिलती है, ब्रह्म ज्ञान मिलता है। ब्रह्म ज्ञान तो हुआ, ध्यान देना, लेकिन उस ब्रह्म ज्ञान का हमने हनन कर दिया, किसके लिए, संसार के लिए। पार्वती किसका प्रतीक है, हम देखते हैं संसार को, पार्वती किसकी प्रतीक है, संसार। तो हम देखते हैं किसको, संसार को पाने की अपेक्षा करते हैं। संसार को पाने के लिए हमने उस ब्रह्म ज्ञान का क्या किया, हनन करना शुरू कर दिए, ब्रह्म ज्ञान की हत्या करना शुरू कर दिए। अरे भाई, ब्रह्म ज्ञान का उपयोग धन कमाने में, पद प्रतिष्ठा पाने में भी हमने किया तो हम भस्मासुर बनेंगे नहीं, आप बताओ। आज हम अपने ब्रह्म ज्ञान का उपयोग कहां कर रहे हैं, आप बताओ। संसार की प्राप्ति के लिए तो कर रहे हैं, पार्वती के लिए तो दौड़ रहे हैं, पार्वती माने संसार के लिए दौड़ रहे हैं, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ऐश्वर्य के लिए। तो हमने उस ब्रह्म ज्ञान का क्या किया, हत्या किया, दूसरे पे हम डालना चाह रहे हैं, दूसरे पे। तो भगवान नारायण मिलते हैं, कहते हैं बेटा यह ब्रह्म ज्ञान दूसरे को सुनाने वाली चीज नहीं है, इस ब्रह्म ज्ञान को अपने ऊपर धारण कर ले। यह ब्रह्म ज्ञान दूसरे को सुनाने की चीज नहीं है, ब्रह्म ज्ञान को क्या करना है, स्वयं अपने ऊपर धारण करना है। और जैसे इस ब्रह्म ज्ञान को अपने ऊपर धारण करोगे तो तुम्हारा देहाभिमान ही गल जाएगा, तू भी भस्म हो जाएगा, भस्म माने तेरा देहाभिमान ही छूट जाएगा और तुम ब्रह्माकार ही हो जाएगा। तो नारायण की कृपा से जो वह ब्रह्म ज्ञान दूसरे को दे रहा था, उस ब्रह्म ज्ञान को कहां धारण किया, अपने ऊपर, अपना सर अपने ऊपर रख लो, अपने ऊपर अपनी कृपा कर लो, तो आपका ही अपना देहाध्यास समाप्त हो जाएगा। और देहाध्यास के समाप्त होते ही आप ब्रह्म रूप ही हो जाओगे। इस तरह से छोटी छोटी कथाओं का एक प्रसंग आ जाता है जो अर्थ बड़ा गूढ़ है, लेकिन किसी न किसी कथा के माध्यम से उसको समझाया जाता है। लेकिन इस गूढ़ अर्थ को या तो खुद विचार करके निष्कर्ष निकालो, समझो, अथवा किसी गुरु के सानिध्य में ही हम इस गूढ़ अर्थ को जान सकते। ऐसे ही प्रसंग है उसका, किसका, भृगु ने परीक्षा लिया, किसकी लिया, विष्णु भगवान की। हाँ, तो लात मारा, कहाँ लात मारा, छाती पे, कौन से छाती पे, दाएं बाएं, बाएं, बाया स्थान किसका है, लक्ष्मी का। तो विष्णु भाई भृगु संत हैं, वो नारायण को लात मार सकते हैं क्या, एक गूढ़ रूप से दिखाया गया, नारायण को लात नहीं मारा है, लात किसको मारा, लक्ष्मी को, लक्ष्मी माने पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य को लात मार दिया। तो भगवान कहते हैं कि जो पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य को लात मार देता है, लात मारला माने तिरस्कार कर देता है, नारायण भी उसके चरणों की पूजा किया करते हैं, ये भाव था उस कथा का। नहीं बताओ कैसे संत हैं भगवान को जाकर लात मारेंगे, भगवान को लात नहीं मारेंगे, वो भगवान को लात मार ही नहीं सकते हैं, उसका एक भाव है। लात किसको मारा है, लक्ष्मी, लक्ष्मी माने पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य को। अब नारायण खुद कहते नहीं कहते, जो भक्त संसार की आसक्ति को छोड़ करके एकमात्र मेरे ही आश्रय पर रह रहा है, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ कि उसकी चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं धन्य हो जाऊं। तो लात किसको मारा है अवध भी जान देना। भगवान उस कथा के माध्यम से यह भी सिद्ध करना चाहते हैं जो लक्ष्मी को हृदय में रख करके सोएगा, 24 घंटे लक्ष्मी लक्ष्मी का चिंतन करेगा, वह बड़ा से बड़ा व्यक्ति होगा, वह भी तिरस्कार का पात्र बनेगा, वह भी लात खाएगा, ये पक्का जान लेना। ये भी भाव दिखाना चाहते हैं भगवान, लेकिन हम इन भावों को तो समझते नहीं हैं और कथाओं में ही क्या करते हैं रस ले लेते हैं, ऊपर ऊपर कथा मतलब क्या रे छिलका खा लेते हैं, छिलके के ही स्वाद में संतुष्ट हो जाते हैं, गूढ़ रस की तरफ हम जा ही नहीं पाते। कोई केला खावे तो केले का छिलका ही चाट लेवे, लेकिन केले का गूदा न खावे तो उसका रस नहीं आएगा, यदि केले का गूदा खा जाए तो तब असली स्वाद आएगा। ऐसे इन कथाओं का यदि असली सार समझना हो तो खुद चिंतन करके निष्कर्ष निकालो अथवा किसी गुरु के सानिध्य में जाओ। तो यहां भगवान शंकराचार्य जी के सानिध्य में हम लोग पहुंचते हैं, उनसे बढ़िया गुरु दूसरा कौन है? मिलेगा। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस अर्थ को पुराणों में श्रुतियों में बहुत गूढ़ रूप से कहा हुआ है उसी अर्थ को मैं आपको कहूंगा विशद माने व्याख्यात्मक ढंग से कहूंगा। शुरू करें, चलो दूसरा 195 वाला श्लोक है। भूतेष्वन्तर्यामी ज्ञानमय सच्चिदानंद प्रकृते परह परात्मा यदि यदुकुल तिलक स एवायम। जो यदुकुल तिलक हैं कौन है? जो यदुकुल के तिलक हैं कौन है? श्री कृष्ण हैं, वही तो ये हैं। कौन है? भूतेषु अंतर्यामी, जो सारे प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित हैं वह कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई है नहीं। कौन है? अब कृष्ण कौन से कृष्ण है ध्यान देना, वो सकल वाला या सकल वाला नहीं है? बड़ा मुश्किल काम है भाई। हम तो कहते स एव हम, जो यदकुल तिलक है वही तो मैं हूं, वही तो ए है। ए कौन है? भूतेषु अंतर्यामी, जो सारे प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित होकर के सबका नियमन कर रहे हैं, सबको नियंत्रित किए हुए हैं, वही तो कौन हूं मैं हूं, वही तो कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कैसे हो सकते हैं? हम तो श्री कृष्ण को मानते हैं क्या देवकी नंदन, द्वारिकाधीश, ये सब नाम बड़े अच्छे हैं, हमें तो अच्छा लगता है। द्वारिकाधीश नाम भी अच्छा रख दिया, उस नगरी का नाम क्या रख दिया? जो उस द्वारिका का मालिक हो। सबसे बढ़िया नौ द्वार वाला तो यही घर है, कौन सा घर? शरीर। इस द्वारिका इस शरीर का अधीश्वर कौन है? मैं हूं, और क्यों ना, वही तो कृष्ण है। मथुरा को उठाए, ओ गोवर्धन को उठाए हैं, गोवर्धन कौन है? शरीर है तो गोवर्धन है, जहां रह करके इंद्रियां बढ़ती हैं। गो माने क्या हुआ? इंद्रियां। इंद्रियां इसी शरीर में रह करके तो मजबूत होती हैं, पुष्ट होती हैं। इसको उठाने वाला कौन है? गोवर्धनधारी कौन है? कृष्ण है। किस उंगली से उठाया है? एक उंगली मतलब एक अंश से उठाया है। यदि विश्व पूरा व्यापक है, पूरा विश्व ही कृष्ण का शरीर है, आत्मरूप है, उसमें एक पानी का बुलबुला पड़ा हुआ हमारा शरीर रूपी, लेकिन इस बुलबुला का आश्रय कौन है? पूरा जल थोड़े है, जल का एक थोड़ा सा कोना है, और क्या? तो भाई भूतेषु अंतर्यामी। अब देखो कृष्ण का परिचय क्या है, बताओ। आप तो कृष्ण कहते काला तुम क्यों काला, मैं क्यों गोरा, पता नहीं क्या क्या गाना गाते हैं। आप लोग पूछते हो ना, तू क्यों काला है, मैं क्यों गोरा हूं। आप लोग भजन में भी गा देते हो, काली गाय का दूध पिया इसलिए मैं, हे भगवान, काली गाय का दूध पीने लोग बंद कर देंगे यदि ऐसा हो गया तो। बोल देंगे नहीं बोले? काली रात में जन्म लिया, बच्चे कहेंगे नहीं मैं दिन में ही जन्मूंगा, काली रात में जन्म लिया मैं काला हो जाऊंगा। ये भक्त अपने भाव को भले आरोपित कर दे, लेकिन इस आरोपण में कोई सत्यता दिखती है क्या? कि काली रात में जन्म लिया इसलिए मैं काला हूं, काली गाय का दूध पिया इसलिए मैं काला हूं, और क्यों जमुना में नहाया मैं इसलिए क्या हूं काले उसमें हाँ, इसलिए पता नहीं जो भी है आपका भाव होगा। ऐसा नहीं कि हमने काला अनाज खाया हो, ज्वार बाजरा आपने गोरा गोरा चावल खाया है। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, भगवान अपना परिचय खुद देते हैं। क्या देते हैं? अहम आत्मा। एक ये मेरा श्लोक नहीं है, गीता जी का था, यह रमन महर्षि से किसी भक्त ने पूछा, महाराज जी आपको सबसे बढ़िया सुंदर श्लोक कौन सा लगता है? तो रमन महर्षि ने कहा सारे श्लोक अच्छे हैं। तो फिर कहा कुछ भी एक विशेष तो होगा। कहते एक विशेष श्लोक अच्छा लगता है, कौन सा? अहम आत्मा गुजाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान कृष्ण क्या अपना परिचय देते हैं? कभी भगवान ने नहीं कहा मैं देवकी नंदन हूं, ठीक है ना। यहां तक कि भागवत कथा सुनना भी, तो जब वो जल भस्म हो गए थे, कौन क्या नाम था, काल एवन जब भस्म हो गया, मुचकुंद काल एवन जब भस्म हो गया, तो मुचकुंद जब सो के जगा तो काल एवन भस्म हो गया, तो उसके सामने कौन प्रकट हुए? भगवान प्रकट हुए। तो कहा आप कौन हो? तो कहा मेरे इतने नाम हैं, इतने रूप हैं, मैं कितने नाम रूपों का कथन करूं, फिर भी इस शरीर से यदि पूछो तो मैं इस शरीर का परिचय दे रहा हूं, लेकिन अपना परिचय नहीं दे रहा हूं, इस शरीर का परिचय दे रहा हूं। अपना परिचय तो जो मैं बता रहा हूं वही हूं। अपना परिचय क्या है? अहम आत्मा गुजाकेश सर्वभूताशय स्थित है, सारे प्राणियों के भीतर स्थित कौन है? मैं हूं। कहते हैं अहम आदिश्च, इस शरीर के पहले भी मैं था, इस शरीर में तो मैं हूं ही, अब भूतानाम अंत है, जब भूतों की अंत हो जाएगा तो भी मेरी सत्ता रहेगी, तो मैं अंतर्यामी रूप से सबके भीतर विद्यमान हूं। अब मैं हूं कि नहीं हूं ये देखो, मैं कह रहा हूं स्वप्न, यहां ये ध्यान देना, ये दृष्टांत है। मैं यहां स्वप्न देखा, यहां सो गया, कहां? मुंबई में सो गया, एक मिथ्या शरीर बना करके स्वप्न देखना शुरू कर दिया। तू बताओ जिस शरीर से मैं स्वप्न देख रहा हूं उस शरीर में मैं हूं नहीं हूं? नहीं हूं। अरे उस समय हूं भाई, तभी तो सर्दी लग रही, वहां आग ताप रहा हूं, चाय पी रहा हूं, यहां ऐसी चलाया हूं, वहां सपने में कहां हूं? बड़े गर्म वो ठंडे देश में हूं। चलो तो उस शरीर में मैं हूं। अच्छा उस शरीर में ही नहीं, जो शरीर सोया है उसमें भी आप हो कि नहीं हो? तो एक साथ दो दो शरीरों में हो कि नहीं हो? दो में नहीं, स्वप्न में और जितने शरीर दिख रहे हैं उसमें भी किसकी सत्ता है? आपकी सत्ता है कि आपसे अलग है? तो सारे भूतों के भीतर अंतर्यामी रूप से जो स्थित है वह कौन है? मैं हो, यदि कुल तिलक कह दो, कृष्ण है, क्या फर्क पड़ता है? वह कौन है? ज्ञानमय है, शरीरमय नहीं है, वह क्या है? ज्ञानमय है, मतलब जिसकी सत्ता से आंख रूप देखती है, जिसकी सत्ता से कान शब्द का ज्ञान करता है, जिसकी सत्ता से जिह्वा रस लेती है, जिसकी सत्ता से घ्राण गंध लेता है, जिसकी सत्ता से त्वग इंद्री स्पर्श का ज्ञान करती है। यदि वो न होवे तो सारी इंद्रियां क्या हो जाएंगी? शिथिल पड़ जाएंगी, किसी भी वस्तु का ज्ञान करने में समर्थ नहीं हो पाएंगी। इसलिए वह परमात्मा कैसा है? ज्ञानमय है। अरे आप भी क्या हो? ज्ञानमय हो कि नहीं? ज्ञानमय बताओ, प्रकाशमय हो कि नहीं हो? संसार अभी तो मैं सबको देख रहा हूं, नहीं देख रहा हूं कि सो रहे हैं? अच्छा सपना देखते हैं तो आप सोते हो जगते हो? सोते हो तो देखते कैसे हो भाई? इतना बढ़िया सीन देखा, गंगा जी कलकल की बह रही है, और जिसको हम कहते हैं जगने के बाद बताते भी हो, आज बड़ी मजा वाला सपना आया, तो उसमें जगे थे सोए थे? जग के देखा होगा, सो गए हो तो देखते कैसे? और जब गहरी नींद पड़ी थी उसमें जगे थे सोए थे? उसमें सोए थे, तो कुछ नहीं देखा, और बड़ा आनंद में रहा, वो देखने वाला कौन था? तो आप सोते जगते नहीं हो, आपकी बुद्धि सोती और जगती है। अब बुद्धि में मैं तना करके आप अपने आप को मान लेते हो, मैं सोता हूं और मैं जागता हूं, जबकि आप हमेशा जागते रहते हो। अभी भी आप जाग ही रहे हो कि सोए हैं? और सपने में हाँ, इंद्रियां ये वाली सो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, लेकिन स्वप्न में आपकी बुद्धि और आप दोनों जगते रहते हो। और सुसुप्ति में बुद्धि भी लय हो जाती है, लेकिन तब भी आप हमेशा जागते ही रहते हो। तो आप कैसे हो? ज्ञानमय, माने प्रकाशमय है, ज्ञान स्वरूप हो। इतना नहीं, सत चित आनंद, आप कैसे हो? सत स्वरूप हो। सत माने वही हुआ, भूता कहा, अहम आदिश्च भूतानाम, अहम आदिश्च मध्यम च, मैं इस शरीर के पहले भी मैं था। भाई स्वप्न में जो शरीर दिखा था, उस शरीर के पहले आप थे नहीं थे? इस वाले में था, इस वाले में जो अभी सोया नहीं था। और सपने में जो दिखा उसमें भी हूं, और सपने वाला छूट गया तो मैं रहूंगा कि चला जाऊंगा? तब भी मैं हूं। तो इस सृष्टि के पहले भी मैं था, स्वप्न की जितनी सृष्टि दिख रही थी उस सृष्टि के पहले मैं हूं, और स्वप्न में जितना सृष्टि दिखी उस सृष्टि में भी मैं हूं। अब सपना समाप्त हो जाएगा तो मैं समाप्त होने वाला नहीं हूं, मैं तब भी रहूंगा ही रहूंगा। लेकिन बस वही है ना, हम इस शरीर में मैं बुद्धि कर लेते हैं, और मैं बुद्धि करके मैं कह देता हूं मैं पैदा हो गया, मैं पहले नहीं था, आज हूं, और कल ये शरीर छूट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। तो ये सारी भावनाएं किसके कारण हो रही है? इस शरीर में मैं बुद्धि करने के कारण हो रही है। तो आप क्या हो? सत्य स्वरूप हो। कैसे हो? सत, आपकी सत्ता का कभी अभाव हो ही नहीं सकता है। यू विल नेवर डाई, आप कभी मर नहीं सकते हो। आपको कोई मारने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ है कि मर सकते हो आप? ये तो मर ही है, शरीर तो जड़ है, मरे हुआ है, इसको क्या मरे हुए को क्या मारना है? बल्कि ये मरा हुआ हमारी सत्ता से चैतन्य बना हुआ घूम रहा है। ये मरा हुआ शरीर मेरी सत्ता से क्या बना हुआ है? चैतन्य बना घूम रहा है। तो मैं तो सत स्वरूप हूं, इस शरीर के पहले भी मेरी सत्ता थी नहीं थी? किसके रूप में थे? पिता के वीर के रूप में थी, पिता के वीर के पहले भी मेरी सत्ता थी, यदि जीव दृष्टि से देखा जाए तो भी। अन्न के रूप में रही होगी, अन्न के पहले भी मेरी सत्ता थी, बारिश के रूप में थी, बारिश के पहले भी मेरी सत्ता थी, देवता के रूप में थी। तो मेरी सत्ता का कभी अभाव हुआ ही नहीं, तो मैं क्या हूं? सत्य स्वरूप हूं। दूसरा कौन हूं? चित्त स्वरूप हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, मैं जड़ नहीं हूं। क्या आप जड़ है बताओ? हम क्या हैं? चैतन्य रूप हैं। इतने नहीं तो क्या मैं दुखी हूं क्या? बोलो भाई, महाराज इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी कौन हूं? मैं हूं। अरे मैं आनंद रूप हूं, दुखी आप मान बैठे हो। हम क्या हैं? आनंद रूप होकर के भी सोचते हैं आनंद हमें पत्नी से मिलेगा, धन से मिलेगा, पड़ोसी से मिलेगा, कहीं से आनंद नहीं मिलने वाला है। आनंद के आप ही रूप हो। कामराज अनुभव में क्यों नहीं आता? क्या अनुभव में भी आता है, लेकिन आप उधर देखते ही नहीं, क्या करें भाई। एक कहावत है ना, एक चींटी थी, कौन थी? चींटी दूसरे चींटी से मिली, कहा बहन तू बड़ी हट्टी कट्टी है, कहाँ रहती है? तो कहा मैं मिस्री के पहाड़ में रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ? मिस्री के पहाड़ में रहती हूँ। कहा बहन मेरा भाग्य खराब है, मैं तो नमक के पहाड़ में रहती हूँ, जहां देखो वहां नमक का ही नमक होता है। तो क्या तुम्हारे पहाड़ में मैं जाऊं तो वहां मिस्री मिलेगी नहीं मिलेगी? कहा इतना बड़ा पहाड़ है, तेरी जैसे हजारों चींटियां आ जाए तो भी कौन सा फर्क पड़ेगा? किसने कहा? मिस्री वाली चींटी ने। तो उसने सोचा पता नहीं जा तो रही हूं वहां मिस्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, बड़ा संशय हो रहा है। तो उसने एक मुंह में गली नमक के लिए खोज रही थी, कहां? मिस्री का पहाड़ खोज रही थी, सारे पहाड़ खोज डाले लेकिन उसको कोई मिस्री मिली नहीं। तो उसने उस चींटी से कहा बहन तूने क्यों हमें इतना थकाया, मैंने तुम्हारी कौन सी दुश्मनी की थी कि तूने मेरी दुश्मनी का वो निकाला? मैं तो सारी जगह घूमा हूं लेकिन कहीं मिस्री मिली ही नहीं। उस चींटी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो दिन रात खाती हूं, इसको क्यों नहीं मिला? बगैर ध्यान से देखा कि उसके मुंह में नमक की डली थी। तो कहा, जब तक इस डली को छोड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें मिस्री का स्वाद मिलेगा नहीं। ऐसे जब तक हम संसार की आसक्ति को, अटैचमेंट को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें उस स्वरूपानंद की उपलब्धि होगी। और उस स्वरूपानंद की उपलब्धि आप खुद भोगते हो, कब? गहरी नींद में। अब बता, गहरी नींद में जो सुख मिलता है वह सुख किसका है? आप खुद सोचो। आप विषय जन्य सुख नहीं है, विषय से रहित सुख है, वह आपका अपना सुख है। अच्छा, वह सुख सबसे बड़ा है या छोटा है? कैसे? अनुभव में आता है? नहीं आता। तो देखो, अनुभव में आप खुद प्रैक्टिकल करो। आप जिस विषय में सुख देखते हो, आपको वह विषय दे दिया जाए जितना चाहिए, लेकिन आपको सोने न दिया जाए। जितना विषय भोग चाहिए उतना दे दिया जाए, लेकिन क्या करने नहीं दिया जाए? तो आप बताओ क्या करोगे? अरे, वो विषय जिसमें सुख माने हो उसको छोड़ोगे तो दूसरा कोई उठा ले जाएगा। अरे, जिसको ले जाना हो ले जाए, हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन सोने दो। इसी से सिद्ध हो रहा है कि वह विषय सुख रूप नहीं है। सुख तो आपका अपना स्वरूप ही है। अच्छा, आपको बहुत गहरी नींद आ गई, बहुत गहरी नींद, उस गहरी नींद से कोई जगावे, बढ़िया केसर का डाला हुआ खीर है, खा लो, बहुत बढ़िया स्वाद है, तो आप क्या कहोगे? सोओगे या खाओगे? तो इससे सिद्ध हो रहा है कि स्वाद से भी सुख किसमें ज्यादा है। तो आप क्या करो? सो जाओ क्या हमेशा के लिए? आप क्या महाराज जी उठा रहे हो, आप बता रहे हो सो जाओ? हम सुलाना ही चाहते हैं, कहां से? संसार के विषयों से सो जाओ और अपने स्वरूप में जग जाओ। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, उसमें जगो। तो कहते महाराज, सोए कैसे आंख बंद करके? कहते आंख बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है। आंख खोले कई लोग सोते हैं, देखा नहीं? देखा है। तो सोने का अर्थ दिया है अद्वैत मकरंद में, क्या दिया है? विज्ञान विरतिर सुप्ति, विशेष ज्ञान का अभाव होना ही सोना है। क्या है? किसी भी वस्तु का महत्व न देना ही उस विषय के प्रति, उस वस्तु के प्रति सोना हो जाएगा। तो संसार का महत्व देना बंद कर दो, आप संसार में क्या किए हैं? सो गए हैं। और अपने स्वरूप को महत्व देना आरंभ कर दो, उसमें आप हमेशा जग गए हैं। तो आपका जो स्वरूप है वह आनंद रूप है। इतने नहीं, प्रकृतेह परह, प्रकृति माने शरीर से वो पर में है, अलग ही है शरीर से। वह क्या है? अलग ही है। इसको मैं कल बताया था आपको, पिताजी मर गए तो पिताजी शरीर थे, शरीर से अलग थे, शरीर से क्या थे? अलग थे। पिताजी मरे नहीं, पिताजी चले गए, मर नहीं गए। हमारे यहां पिताजी मरते हैं क्या? भाई, हमारे यहां नहीं मरते, चोला छोड़ गए। हमारे यहां पिताजी क्या करते हैं? चोला छोड़ गए, मरते नहीं। हमारे यहां, हमारे सनातन धर्म में कोई मरते ही नहीं है। पिताजी चोला छोड़ गए, महात्मा जी शरीर छोड़ दिए। तो हम चोला छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं, अभी भी हम हैं, किसी और चोले में रहे होंगे लेकिन हैं। तो हम मरते नहीं हैं। पिताजी तो, स्वामी जी चले गए, तो कौन चला गया? शरीर चला गया, आत्मा चली गई? शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, आत्मा भी कहीं आती जाती नहीं है। फिर आया गया कौन? कहते वही चिदाभास जो जीव था, अंतःकरण के साथ चैतन्य चला गया। किसके साथ है? भाई घड़ा है, घड़े में पानी भरा है, घड़ा टूट जाएगा तो क्या करेगा? पानी बहेगा ही नहीं बहेगा। और जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां परछाई पड़ेगी। तो एक घड़ा टूटेगा तो इसमें जो अंतःकरण है, वो जल है, वह अपनी वासना के अनुसार उधर बहेगा। भाई पानी किधर बहेगा? जिधर जिधर ढाल होगा। तो आप कहां जाओगे? जहां आपकी वासना होगी। सीधी सी बात है, कोई गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाएगा, कोई फिल्म देखने जाएगा, कोई समुद्र देखने जाएगा, कोई कई हर व्यक्ति एक ही घर में थोड़े जाएंगे। तो जिसके भीतर जैसी वासना होगी वह व्यक्ति उधर जाएगा, लेकिन जब जा रहा है ना तो सत्ता चैतन्य आत्मा उसमें प्रतिबिंबित होता चला जाता है, इसके कारण उसमें क्रिया आती है। तो सच्चिदानंद है, अच्छा प्रकृति पर, जो प्रकृति से पर है वह कौन है? परात्मा। कौन है? जो शुद्ध आत्मा है, स एव यहां अयम, वही तो यह यदकुल तिलक है, वही तो भगवान श्री कृष्ण है। आप कैसे कहते हो कृष्ण सगुण है? तो ये सारा लक्षण किसका है? निर्गुण का है कि सगुण का है? तो भगवान श्री कृष्ण भी क्या है? सगुण ही, सगुण नहीं, कैसे हैं? निर्गुण ही हैं। भगवान कृष्ण ने भी अपना परिचय इसी रूप में ही दिया है। लेकिन इतनी जल्दी मानने वाला पूर्व पक्षी है ही नहीं। पूर्व पक्षी ने तुरंत टोंक दिया, नानु सगुण दृश्य तनु तथैक देशाधिवासश्च स कथम भवेत परात्मा प्राकृतवत राग रोषयुत। आपने ठीक है कृष्ण को क्या मान लिया है? निर्गुण मान लिया, लेकिन ननु सगुण दृश्य तनु, लेकिन जो गुण वाला है श्री कृष्ण तो सगुण है। हम क्या है? श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण जगह अपने आप को भी रख सकते हो, हम तो क्या है? सगुण है। क्यों सगुण है? दृश्य तनु, क्योंकि हमारा शरीर दिखाई देता है, नहीं दिखाई दे रहा है? काला गोरा मोटा पतला राजा रंग दिखाई दे रहा, नहीं दिख रहा है? रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी दिखाई दे रहा, नहीं दिख रहा है? तो सगुण दृश्य तनु, जो सगुण होता है उसका शरीर दिखता है। तथा एक देश अधिवासश्च, और एक देश में ही रहता है जो सगुण है, वह कहां रहेगा? एक देश में ही तो रहेगा कि सब देश में रहेगा? भाई गन्ना में जो मिठास है, मिठास गन्ने में रहेगी कि उसमें भी रहेगी? किसमें? मिर्ची में भी रहेगी, आंवले में? तो एक देश अधिवासश्च, वह एक देश में ही रहेगा। स कथम भवेत परात्मा, तो ऐसे कृष्ण भी एक देश में रहते हैं। कहां रहते हैं? मथुरा में है तो मथुरा में, गोकुल में है तो गोकुल में, द्वारिका में है तो द्वारिका में। तो वह परमात्मा कैसे हो सकते हैं? स भवेत, स कथम भवेत परात्मा, वह परमात्मा कैसे हो सकते हैं? प्राकृतवत, जैसे सामान्य पुरुष होते हैं ऐसे सामान्य पुरुषों की तरह राग रोषयुत, किसी से उनका राग है किसी से उनका द्वेष है। हमें तो ऐसे ही दिखाई देता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या करते हैं? राग करते हैं, और दुर्योधन से द्वेष करते हैं। तो परमात्मा कैसे हो सकते हैं? परमात्मा का तो न किसी से राग है न किसी से द्वेष है, वह तो चींटी से लेकर के उस ब्रह्म तक को समान सत्ता दे रहा है, उसमें अपना पराया राग द्वेष है ही नहीं। इनमें तो राग द्वेष अपना पराया दिखाई दे रहा है। एक कृष्ण कैसे परमात्मा कैसे हो सकते हैं? कृष्ण के भीतर परमात्मा का कोई लक्षण दिखाई हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी कर रहा है। तो कहा भाई कृष्ण के भीतर परमात्मा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कहते तुम इन चर्म चक्षुओं से देखोगे तो तुम्हें नाम रूप दिखाई देगा, वह तत्व दिखाई नहीं देगा। यदि ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें वह तत्व दिखाई दे जाएगा। भाई देखो ये वस्त्र है, क्या है? वस्त्र है। किस रंग का वस्त्र है? लाल कहो कसाय कहो, वस्त्र है लाल रंग है ना। लेकिन कपास दिखती है किसी को? क्या दिखता है? वस्त्र ही दिखता है, चादर दिखती है, वस्त्र दिखता है, दुपट्टा दिखता है, कुर्ता दिखता है, लेकिन कपास है? और जिसने कपास के स्वरूप को जाना भी नहीं हो किसी बच्चे ने, तो उससे पूछो ये वस्त्र किस कपास से बनी होगी, तो क्या कहेगा? लाल कपास से। और नीला वस्त्र होए तो क्या बताएगा? नीला कपास से। और पीला वस्त्र होए तो किस कपास से? पीला कपास से। क्योंकि उसने भाई कई रंग के लाल अमरूद देखा ना, सफेद अमरूद लाल अमरूद, तो उसने अपने मन की कल्पना ही तो करेगा कि लाल वस्त्र लाल कपास से, सफेद वस्त्र सफेद कपास से, और नीला वस्त्र नीले कपास से बनेगा। ऐसी कल्पना होगी नहीं होगी, आप बताओ। आप उस बच्चे की जगह रहोगे तो आप देखोगे नहीं देखोगे बताओ। लेकिन जो ज्ञान वाला होगा वह सब वस्त्रों के भीतर कपास को किस रंग का देखेगा? श्वेत कपास, सफेद कपास देखेगा। अब बता, इस आंख से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? लाल, पीला, नीले भी दिखेगा, लेकिन ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो क्या दिखेगा? सफेद कपास। दिखाई नहीं दिखाई आपको बताओ? ये युक्ति है। उसी प्रकार से इन चर्म चक्षुओं से देखोगे तो काला, पीला, गोरा, टेढ़ा, मेढ़ा सब दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो आपको काला, पीला, नीला नहीं दिखाई देगा। काले, पीले, नीले के भीतर जो सत्ता देने वाला है वह परमात्मा कैसा दिखाई देगा? अंतर्यामी, ज्ञानमय, सच्चिदानंद, इस शरीर से अलग वह आत्मा आपको दिखाई देगी, अनुभव में आएगा। लेकिन जब तक आपकी दृष्टि सूक्ष्म नहीं बनेगी, सारग्राही नहीं बनेगी, तब तक वह तत्व आपको दिखाई दे नहीं सकता। भाई स्वाभाविक है, हम लोग भी गन्ना गांव में गए थे, वहां गन्ना खाना था, तो हमें गन्ना फोका माने मुलायम है, रस वाला है, थोड़ा रस वाला नहीं, हमें नहीं पहचान थी। लेकिन जो गन्ने की खेती करते हैं वो देख करके गन्ना बताते हैं, स्वामी जी वाला गन्ना आप ले लो, एक गन्ना मुलायम है, क्योंकि गन्ने को देखते ही वो गन्ने के भीतर के रस को भी जान जाते हैं। लेकिन मैं तो देख रहा हूं इतना गन्ना मोटा है, सुंदर होगा, अच्छा होगा। अरे औरों की बात सोच के, ये मौसम्मी खरीदते हो ना आप लोग, अब मौसम्मी में रस है अथवा रस नहीं है कैसे जानते हो? छिलके से जान जाते हो, हमें नहीं मालूम था। हम तो कितनी बार इसे गए कि एकदम फोका निकला, तो किसी माता ने बताया कि जिसका चिकना छिलका होए ना उसमें रस होगा। यही बात है ना, छिलका कैसा होए? पतला होए, पतला होए उसमें रस होगा, और मोटा छिलका होए और रफ छिलका होए तो उसमें रस, ये तो बाद मालूम चला, लेकिन कई बार हमने भी धोखा खाए हैं। तो अनुभवी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो वह तत्व आपको बोध में आ जाएगा। आज के दृष्टांत में आप जानते ही जानते हैं, एक है कैमरा और दूसरा है एक्सरे। क्या है? कैमरा। तो कैमरा किसकी तस्वीर लेगा? आपकी चमड़े की तस्वीर लेगा। और एक्सरे क्या लेगा? चमड़े का भेदन करके किसकी तस्वीर लेगा? हड्डियों की तस्वीर ले लेगा। हम कहते हैं हड्डियों का भी जो भेदन कर देवे, हड्डी को भी जो सत्ता दे देवे, ऐसी ज्ञान दृष्टि यदि आपके भीतर आ जाए तो सारा संसार ही आपको क्या दिखेगा? परमात्म रूप दिखेगा। तो वो ज्ञान दृष्टि मैं सोच रहा हूं आपको मिले, चाहिए नहीं चाहिए बताओ? तो विराट, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया तो विराट रूप देखा, तो हम भी आप भगवान यहां ना देखना, आप संसार में जाकर के विराट रूप देख लोगे। ये सारा विश्व ही परमात्मा का क्या है? रूप ही है, ऐसा विराट अवलोकन आपको हो जाएगा। लेकिन कौन सी दृष्टि पाने के बाद? अब सोचोगे इसी आंख से महाराज जी ऐसे दिखा दो, आप यहां यहां भुजाएं निकाल दो और मुंह में अर्जुन चिपका पड़ा है, दांतें चिपका है, ऐसा देख लोगे तो भल के डर भी जाओगे। इसलिए यहां मेरा जादू का खेल न देख करके उस परमात्मा के इस जादू के खेल को देखोगे तो उसमें हम सब समाये पड़े हैं, तो आपको दिव्य दृष्टि हो जाएगा। उस दिव्य दृष्टि से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति, मतलब दिव्य दृष्टि से ही परमात्मा के स्वरूप को जान जाओगे कि परमात्मा इस शरीर वाले हैं नहीं। इस पे चिंतन कब करना है? लेकिन देखना भाई, इसमें विषय बहुत गंभीर है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। आपको भागवत आदि के विषय में जो संशय है ना, सारे संशयों का समाधान भी हो जाएगा। मैंने एक और संशय बताया था कभी आपको, अर्जुन ने भी, ओ परीक्षित ने भी भागवत में एक संशय खड़ा किया है कि परमात्मा तो धर्म के अवतार के लिए ग्रहण किए हैं, उन्होंने थोड़ा पर स्त्रियों के साथ रमण करके अधर्म का निरूपण क्यों किया? तो परीक्षित जी को वहां जो सुखदेव जी जवाब देते हैं ना, वो जवाब तो दिए हैं कि अग्नि में, हवा, ओ सूर्य में, ये सर्वसमर्थशाली जो लोग होते हैं उनमें पाप पुण्य का लेश नहीं होता है। लेकिन वो बात हमारी बुद्धि में कम समझ में आया, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ने जो यहां निश्चय करके बताया है ना, वह मेरी बुद्धि में बात बहुत समझ में आती है। लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, वक्त आएगा तभी बताऊंगा, जब प्रसंग आएगा तो वो कौन सा समाधान दिए हुए हैं जो आपकी भी बुद्धि में वह बात समझ में आ जाएगी। लेकिन चिंतन आगे चलता रहेगा। ओम शांति शांति शांति।